एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
इससे पेशतर के मैं तुझे बतन से खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया।
अपना जीवन ये हम तुझ पे वारे प्रभु यीशु प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे प्रभु यीशु प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें कि हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे दिलों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनने जाते हैं पिता। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उनको तू मदद कर तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर पिता। मेरे संग हो, तेरा सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर हमारे साथ। देखिए मती रचित सुसमाचार के लेखक एक अजीब चीज लिखते हैं जो हम पाते हैं मती 1:23 में। यहाँ लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अनुवाद है परमेश्वर हमारे साथ। मती 1:23। यह पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह नबी के भविष्यवाणी से लिया गया है जो हम पाते हैं यशायाह 7:14 में। यह नए नियम में पूरे होते दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से अपनी पहल के जरिए ईश्वरत्व ने उनमें से एक को मनुष्य बनाने के लिए तैयार किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पहला, हमें अपना प्रतिस्थापन और जमानत प्रदान की जा सके। दूसरा, ईश्वर के तरीकों को स्पष्ट किया जा सके। तीसरा, हमें हमारे पाप पूर्व पूर्णता में वापस लाया जा सके। और चौथा है, ईश्वर के न्याय के बारे में बहस को सुलझाया जा सके। मानव जाति को ईश्वर की आवश्यकता थी और ईश्वर ने अपने भटके हुए बच्चों की वापसी के लिए बहुत उत्सुकता से प्रयास किया, इसलिए वह पृथ्वी पर आया। उसके ना आने पर हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। परमेश्वर धरती पर एक बहुत ही अलग रूप से आए जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। ईश्वर के चुने हुए लोगों ने भी नहीं सोचा था कि उद्धारकर्ता गरीबी और विनम्रता में आएगा। उन्होंने अच्छाई से ऊपर महानता, नम्रता से ऊपर महिमा, गरीबी से ऊपर शक्ति, बलिदान से ऊपर राजसीपन की उम्मीद की थी। इमानुएल सच्चे और पूर्ण अर्थों में ईश्वर थे। वे हृदय से ईश्वर थे और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ईश्वर थे। वे मानव शरीर में ईश्वर के सभी प्रेम और उनकी सभी अच्छाइयों का प्रकटीकरण थे। यह यीशु था, मरियम का पुत्र, ईश्वर का पुत्र, जिसे हम इमानुएल कहते हैं। यीशु से मिलिए, जैसे कि यह पहली बार हो रहा है, और उसे अपने जीवन को नवीनीकृत करने दीजिए। हम यहूना 1:1-2 में पढ़ते हैं कि यीशु परमेश्वर का वचन है, कहता है आदि में परमेश्वर था, कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्यारे, इसमें तीन बात लिखी हुई है, हम तीन बात पाते हैं। पहला कि आदि में वचन था, और दूसरा कि वचन परमेश्वर के साथ था, और तीसरा बात है वचन परमेश्वर था। यहाँ पर वचन प्रभु यीशु मसीह को बोध कर रहा है। यहूना की भाषा सरल लेकिन गहरी है। हमें इन आयतों का पूरा अर्थ समझने के लिए इनका विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, क्या आप वचन की अभिव्यक्ति को पूरी तरह समझते हैं? क्या आप देखते हैं कि वचन कितना महत्वपूर्ण है? हम वास्तव में यीशु को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसकी दिव्यता, सृष्टि में उसके हिस्से, पिता के साथ उसके संबंध और मानवता के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं पहचानते। यीशु परमेश्वर का वचन है, वचन परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। यीशु के माध्यम से ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और मनुष्यों के सामने खुद को अभिव्यक्त किया। यीशु में हम परमेश्वर के सबसे अंतरंग, सबसे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्थायी विचारों की अभिव्यक्ति पाते हैं। यीशु अपने पिता के साथ इतने पूर्ण रूप से पहचाने जाते हैं कि उन्हें उनका वचन माना जा सकता है। प्यारो, जब फिलिप्पुस ने यीशु से पिता को प्रकट करने के लिए कहा तो यीशु ने उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यह हम पाते हैं यूहन्ना 14:9 पद में। जब हम यीशु से परिचित होते हैं तो हम परमेश्वर से परिचित होते हैं। यदि हम परमेश्वर के प्रेम, भलाई, मार्गों से परिचित होना चाहते हैं तो मसीह से परिचित होने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। वह परमेश्वर का वचन है, अपने पिता की एक परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। पिता और पुत्र अलग अलग व्यक्ति हैं। इसे हम बाइबल में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसे हम स्पष्ट रूप से पा सकते हैं। इसे हम मत्ती 3:17 और यूहन्ना 20:17 को देख करके पा सकते हैं। परमेश्वर और यीशु के बीच, पिता और पुत्र के बीच पूर्ण पहचान के कारण ऐसे लोग हैं जो उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यीशु परमेश्वर की एक परिपूर्ण अभिव्यक्ति थे, लेकिन वे पिता से अलग व्यक्ति थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत का सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा ही किया। यह हम पाते हैं यूहन्ना 1:10-11 पद को भी इसका सहारा के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, और इब्रानी 1:1-2 में भी इस बात को हम पाते हैं। यूहन्ना 1:3 में बताया गया है कि यीशु मसीह ही संसार का सृष्टिकर्ता है। मसीह द्वारा संसार की रचना प्रत्येक मानव, सभी सृजित प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। प्यारो, बहन एलन जी वाइट कहती हैं, युगों की चाह की पुस्तक पृष्ठ 201 में, पृष्ठ 20 में वह लिखती हैं, यह मसीह ही था जिसने आकाश को फैलाया और पृथ्वी की नींव रखी। यह उसका हाथ था जिसने अंतरिक्ष में दुनिया को लटका दिया और मैदान के फूलों को आकार दिया। यह वह था जिसने पृथ्वी को सुंदरता से और हवा को गीतों से भर दिया, और पृथ्वी, हवा और आकाश की सभी चीजों पर उसने पिता के प्रेम का संदेश लिखा। जब परमेश्वर ने अपने बेटे से कहा हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएंगे, तो शैतान यीशु से ईर्ष्या करने लगा। वह चाहता था कि मनुष्य के निर्माण के बारे में उससे सलाह ली जाए, और क्योंकि उसे सलाह नहीं दी गई, इसलिए वह ईर्ष्या, जलन और घृणा से भर गया। हम आगे के आयतों में पाते हैं कि हमें संसार के सृष्टिकर्ता मसीह के बारे में अधिक जानकारी। पहला है यूहन्ना 1:10, वहां हम पढ़ते हैं कि संसार यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था। दूसरा है पहला कुरिन्थियों 8:6, यहां कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ है। इफिसियों 3:9 पद कहता है परमेश्वर सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया। और यूहन्ना 1:11 में हम पढ़ते हैं कि वह यानी यीशु अपने घर आया, अपने लोगों के पास आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वे लोग पाप में घुल मिल गए थे, वह पवित्रता को नहीं पहचान पाए। यह दृश्य समझ से परे है, लगभग विश्वास से परे, या कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था, जो हो ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। यीशु को पता था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, फिर भी वह आया। प्यारो, यह उसके हमारे प्रति प्रेम को दर्शाता है, जिसके द्वारा आप और हम पाप से बचाए जा सकते हैं। आइए हम और अधिक मसीह और पिता के बारे में अध्ययन करें। आइए हम देखें यूहन्ना 3:16-17, यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 पद कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्यारो, यहाँ पर हम जो प्रेरणा देखते हैं वह परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति था, हम मनुष्य जाति के प्रति था, जिसके द्वारा वह अपने प्रिय पुत्र को हमें पाप से बचाने के लिए भेजा। उसका उद्देश्य था हमें पाप से बचाए, हमें उद्धार करें। हमारे उद्धार की योजना में पिता और पुत्र के बीच पूर्ण एकता थी। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा और पुत्र ने स्वेच्छा से जाने की पेशकश की। उद्देश्य और प्रयास की इस एकता का परिणाम यीशु की मृत्यु और हमारे लिए अनंत उद्धार की पेशकश थी। यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु ने अपने और पिता के बीच मौजूद घनिष्ठ एकता को दिखाया है, उसके बारे बतलाया है। पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते में हर चीज में हमेशा सबसे करीबी एकता होती है। यह विचार और उद्देश्य योजना और प्रयास में सच है। यीशु परमेश्वर का प्रकट करता है। वह जो कुछ भी कहता और करता है उसमें परमेश्वर उसके माध्यम से बोलता है। यदि उनके उनके श्रोताओं में उनके संपूर्ण आचरण में रहस्योद्घाटन को पढ़ने के लिए आध्यात्मिक समझ नहीं है, यदि वे उनके संदेश में दिव्य आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो कम से कम उन्हें उनके शक्तिशाली कार्यों में देखे जा सकने वाले संकेतों को जानने और समझने में सक्षम होना चाहिए। ये बताते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, जिस तरह की यीशु मसीह बाइबल में कहता है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर देहधारी हुआ। इब्रानियों 2:14-15 और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में हम यह बात पाएंगे कि परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया। यह हमारे जगत में आया, यह इसलिए आया कि वह हमारे बीच में रहे और हमारे पाप के लिए मृत्यु सहे कि हम बचाए जा सकें। यह एक महान रहस्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर मानव शरीर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ। यह हम पाते हैं 1 तिमोथियस 3:16 में लिखा हुआ, जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की उसने पृथ्वी को बनाने वाली धूल को बनाया। परमेश्वर ने धूल से मानव जाति का निर्माण किया। फिर भी परमेश्वर जब पृथ्वी पर आया तो वह मनुष्य बन गया। वह रहस्य ईसाई धर्म का हृदय है। वह रहस्य भविष्यवाणी की पूर्ति भी है, जिसे हम देखे मत्ती 1:21-23 में देख सकते हैं और यशायाह 7:14 में। मानव कान इससे अधिक आनंददायक या महत्वपूर्ण संदेश नहीं सुन सकते थे। परमेश्वर को मनुष्य के रूप में रहने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना था। परमेश्वर के पुत्र को मानव जाति का पुत्र बनना था, ताकि पृथ्वी के बच्चे फिर से परमेश्वर के बच्चे बन सके, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में, जो कोई उसमें विश्वास किया उसने परमेश्वर के पुत्र होने का शक्ति दिया। ईश्वर तो मानवता बन गया ताकि पापी मानवता को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जा सके और उसकी छवि में बहाल किया जा सके। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को धरती पर आने के लिए दिया, ताकि वे मनुष्य का स्वभाव लें, न केवल जीवन के कुछ वर्षों के लिए बल्कि स्वर्गीय दरबार में अपने स्वभाव को बनाए रखने के लिए, जो परमेश्वर की वफादारी की एक चिरस्थायी प्रतिज्ञा है। चयनित संदेश नामक पुस्तक का पहला ग्रंथ पृष्ठ 258 में लिखा हुआ है, मसीह में विश्वास के माध्यम से हम शाही परिवार के सदस्य, परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के साथ सहवारिस बन जाते हैं। मसीह में हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार का उद्धारकर्ता भी है। प्रकाशित वाक्य 5:12 में आइए हम पढ़ें, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु इन 7 बातों के पात्र हैं, क्योंकि वह वध किया हुआ मेमना है जो हमें बचाने के लिए वध हुआ। प्रकाशित वाक्य 5:12 स्तुति और विजय का कोरस है, जिसे छुड़ाए गए लोग मसीह के अंतिम राज्य अभिषेक के समय सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर गाते हैं। संत वहां इसलिए हैं क्योंकि मसीह ने उन्हें मृत्यु से छुड़ाया है। वे पापी थे जो अनंत मृत्यु के लिए अभिशप्त थे, लेकिन अब वे अनंत जीवन और महिमा का आनंद लेते हैं क्योंकि यीशु ने उनके छुटकारे के लिए कीमत चुकाई है। वह कीमत उसका जीवन और लहू था। वह मरा ताकि वे जी सके। उसने सब कुछ त्याग दिया ताकि वे सब कुछ प्राप्त कर सके। वह स्वर्ग से आया ताकि स्वर्ग हमेशा के लिए उनका हो सके। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया ताकि पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। उसने अपने पिता के साथ सिंहासन पर अपना पद छोड़ दिया ताकि छुड़ाए गए लोग महिमा में शासन कर सके। और वे यीशु को जो सार्वभौमिक राजा का ताज पहनाया गया है वह सार्वभौमिक प्रशंसा देते हैं जिसके वह हकदार हैं। मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, कहता है यूहन्ना 1:29 में। वह प्रावधान है जिसे परमेश्वर ने संसार के निर्माण से पहले बनाया था, जिसे हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 1:20 में और प्रकाशित वाक्य 13:8 में भी यही बात हम पाते हैं। इस पर विचार करना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। परमेश्वर पहले सृष्टिकर्ता और दूसरे उद्धारक नहीं है। आदम के पाप करने के बाद वह उद्धारक नहीं बने। उन्होंने मानव जाति का निर्माण करने से पहले उद्धार की योजना बनाई। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को समय के कारक से सीमित करना चाहते हैं, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि उनमें एक शाश्वत उद्धारक के साथ साथ एक शाश्वत सृष्टिकर्ता भी है। क्रूस पर मसीह की मृत्यु ने धर्मी लोगों के लिए अनंत जीवन खरीदा और दुष्टों के लिए न्यायपूर्ण न्याय सुनिश्चित किया। मसीह के लहू द्वारा मानव जाति के छुटकारे का समय आपके भाग्य का महान समय है। कल्पना कीजिए कि आप भीड़ के साथ हैं और प्रकाशित वाक्य 5:12 का गीत गाना लोग गा रहे हैं, उसमें आप हैं और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये सब के द्वारा वे लोग यीशु का महिमा कर रहे हैं, वे लोग यह गीत गा रहे हैं। क्या आप उनके बीच निश्चित नहीं होना चाहते हैं? आप वहां कैसा महसूस करेंगे? आप अगर वहां जरूर होना चाहते हैं तो अभी से तय कर लीजिए कि परमेश्वर की कृपा का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, यीशु मसीह के चरित्र को अपनाएं, उसके धार्मिकता को अपनाएं कि उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम से आप उस भीड़ में हो सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं और उसकी आशीष पा सकते हैं। वे सभी जिन्होंने यीशु के साथ बलिदान का क्रूस उठाया है वे उसके साथ उसकी महिमा में भागीदार होंगे। यह मसीह का आनंद था कि उसके दीनता और पीड़ा में उसके शिष्य उसके साथ महिमावान हों। वे उसके आत्म बलिदान का फल हैं। उनके अपने चरित्र और आत्मा का उनमें कार्य करना उसका पुरस्कार है और अनंत काल तक उसका आनंद रहेगा। यह आनंद जो उसके साथ साझा करते हैं क्योंकि उनके श्रम और बलिदान का फल दूसरे दिलों और जीवन में दिखाई देता है। वे मसीह के साथ मिलकर काम करते हैं और पिता उन्हें वैसा ही सम्मान देगा जैसा वह अपने बेटे को देता है, बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से। ईश्वर के 3 सदस्यों ने एक योजना की कार्यान्वित किया जिसे उन्होंने दुनिया के निर्माण से पहले ही कर लिया था। इसको उन्होंने इस कार्य में लाया। उन्होंने अपना एक अंश ईश्वरीय पुत्र दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए समर्पित कर दिया। परमेश्वर हमसे अति प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, पाप से उद्धार करने के लिए अपने बेटे को दे दिया। प्यारों भाइयों और बहनों, क्या आप उसे अपना उद्धारकर्ता आज मानकर ग्रहण करते हैं? परमेश्वर आपको मदद करे कि आप इस तोहफा को ग्रहण करें, उसको उद्धारकर्ता माने और आप उद्धार पाए कि हम और आप हमेशा के लिए स्वर्ग में हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के संग रह सके। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के लिए। तू हमसे बहुत प्यार किया पिता, तू चाहता है कि हम पाप में ना मरे, हम पाप में ही ना रहे, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उसके बलिदान, उसके चरित्र को अपना करके, उसमें विश्वास करके और तेरे राह में चल के हम स्वर्ग राज में हो सकते हैं, बचाए जा सकते हैं पिता। इस अनुग्रह, इस आशीष को देने के लिए हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। तो हमें मदद कर कि हम इसे ग्रहण कर पाए और तेरे पवित्र आत्मा के
तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं।
गुनाह जाया ना करो, गुनाह की
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।